शैतान रजीम। अब आगे देखेंगे, पीछे बात थी अजाब की, पकड़ की, अब बात है पकड़ने वाले की। कौमों पर जब भी अल्लाह की पकड़ आती है तो उस वक्त लोग उसको मुख्तलिफ नाम दे देते हैं। कभी उसको मदर नेचर कह देंगे, कभी उसको कोई और सबब का जरिया बना देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि आओ तुम्हें बताऊं कि पकड़ता कौन है जिससे तुम गाफिल हो। तुम सख्त अजाबों का शिकार किसकी पकड़ से होते हो, जिसकी कुदरतें और जिसकी नेमतें दिन रात तुम्हारे सामने होती हैं, लेकिन तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहते हो। तो आयत नंबर 78 से आगे तौहीद के कुछ दलाइल हैं। वहुवल्लज़ी अंशअलकुमुस्सम अवल अबसार अवल अफ़ईदा, और वही तो है। ये लफ्ज़ वही तो है बड़ा खूबसूरत है, वहुवल्लज़ी। ऐसे लगता है कि कोई ढूंढ रहा था, कोई इधर से उधर भटक रहा था किसी हस्ती को पाने के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसको दूर क्यों देखते हो, उसको उधर क्यों ढूंढते हो, वो तो तुम्हारे बिल्कुल करीब है। कि जिसने बनाए तुम्हारे लिए कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी अकलें। समा का लफ्ज सीन नी माइन से आप देखिए तो कान के लिए लफ्ज आता है उजुन, यानी फिजिकल ईयर्स। इंग्लिश में अगर आप ईयर्स लिखते हैं, कान है उसके लिए उजुन आता है, लेकिन समा क्या है? लिसनिंग, हेयरिंग, सुनने की ताकत। और अगर आप इन दोनों को लिखकर देख लीजिए कि कान अगर जिस्म है तो समात उसकी रूह है। कान हो और इंसान सुन ना पाए तो हम क्या कहेंगे कि जिस्म तो है रूह नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, कान उनके बिल्कुल ठीक होते हैं देखने में लेकिन वो सुन नहीं पाते। इसी तरह देखिए अल बसार विजन, देखने की ताकत, कुव्वत बसारत। आंख के लिए लफ्ज आता है आइन, ठीक है, तो बजाहर आंख नहीं, उसके अंदर की चीजों को देखो। वह अवल अफ़ईदा, अफ़ईदा का लफ्ज़ फुआद से है। अब लफ्ज दिल के लिए कल्ब आता है, जिसको आप कह सकते हैं कि फिजिकल हार्ट इंग्लिश में जिसको कहते हैं, लेकिन अफ़ईदा क्या है? दिल के अंदर का गुदास, जज्बे, इमोशंस, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें तो अपने जाहरी फीचर्स नजर आते हैं, कभी उनके अंदर के काम करने के तरीके को तो देखो। उसने अंशा, और अंशा का लफ्ज वही है जिसको उर्दू में हम नश्व नुमा कहते हैं, नशत अलूरा उखरा, यानी उठाना, उठान होना। कि तुमने कभी सोचा कि तुम कैसे सुनते हो, तुम कैसे देखते हो, तुम्हारा दिल कैसे काम करता है? लेकिन कलीलम मा तशकुरून, बहुत कम है जो तुम शुक्र अदा करते हो। इस कलील लम्हे में दो बातें हैं, नंबर एक शुक्र की मिकदार भी थोड़ी है जो तुम करते हो, यानी सारे ही करते हो लेकिन थोड़ा शुक्र करते हो, और कलील लम्हे में तुम खुद भी थोड़े हो जो शुक्र गुजारो, यानी अल्लाह की नेमतों को सही इस्तेमाल करने वाले लोग भी थोड़े हैं और इस्तेमाल भी थोड़ा है। और देख लीजिए यही तीन अज़ा हैं जिनसे अमूमन गुनाह होते हैं, जिनसे नाफरमानी होती है, और इन्हीं तीन के जरिए इंसान अपने रब को भी पुकार पहचान सकता है। तो गोया कि इन नेमतों का इस्तेमाल करना बेहतरीन तरीके से ये इसका शुक्र है। यहां तशकुरून पे दोहरा लीजिए शुक्र के तीन दर्जे, कि शुक्र बिलकल दिल से शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने मुझे समात बसारत और ये सब कुछ दिया, और शुक्र बिल लिसान जुबान से भी इजहार करें अल्लाह तेरा शुक्र आंखे दी। आप सोचिए अगर हम नबीना होते क्या कुछ महरूम रह जाती मैं देखने से अगर मेरी आंखें काम ना करती। अब अगर आंखें ना बीना हो जाए तो जिंदगी का हुसन क्या रह जाएगा, और अगर आज हमारे कान सुनने से बेजार हो जाए तो क्या हम सुन सकते हैं, और आज अगर हमारे दिल में जज्बे ही ना हो, ना मोहब्बत ना नफरत ना खुशी ना गम ना एक्साइटमेंट ना कोई कुछ, बस एक डल पत्थर का पत्थर दिल है जो कह दिया कर दिया, क्या जिंदगी रह जाती। तो हमें इन आज़ा को अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाना है। फिर आता है शुक्र बिल जवारेह, इन सारी नेमतों को इन आज़ा को नेमत देने वाले की खुशी के लिए इस्तेमाल करना। कई ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसी वीडियोस लोग भेजते रहते हैं, नाबीना शख्स है टटोल टटोल के मस्जिदों में जाता है और हाथ नहीं है बाजू नहीं है। चंद दिन पहले किसी ने एक ईमेल भेजी थी कि एक शख्स है जिसके दोनों बाजू नहीं है, टांगे हैं सब है, बिलीव मी वो सब कुछ वो कर रहा है इन दो पाओं से, यानी हाथों के बगैर वो खाना भी खा रहा है, पका भी रहा है, वो लिख भी रहा है, वो कुरान भी पढ़ रहा है, वो मस्जिद में जाके नमाज भी अदा कर रहा है। शर्म आती है उस वक्त सोच के कि हम सब कुछ रखने वाले इन नेमतों का क्या इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह को पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया का कोई स्कूल नहीं है जो आपको अल्लाह के करीब करेगा, वो स्कूल क्या है आपका अपना गौर व फिक्र और तदब्बुर करना। फिर उसके बाद फरमाए वहु अल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ी, और वही तो है जिसने तुमको जमीन में फैला दिया, वह इलैही तुहशरून, फिर इसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। आज भी देखिए कि कोई चीज जब आपने बहुत अच्छी तरह समेटनी होती है ना तो पहले उसको फैलाते हैं, ये मेरी अपनी आदत है जिससे मैं बहुत तंग हूं। कोई चीज ठीक करनी होती है ना तो मैं कभी ऐसे नहीं करती, लोग होते हैं जहां खड़े हुए वो कोना सही करने लग गए, पैकिंग करनी है चलो एक चीज पकड़ी पैक कर ली, मेरी आदत क्या सारी चीजें पहले सामने रखती हूँ जो ए टू जी है, फिर उसको उसकी जगह पर टिक 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 टिक, ये इधर जाएगी ये इधर जाएगी इधर जाएगी, ताकि जहां रखू मुझे भी पता हो और चीज ऑर्गेनाइज रहती है। अल्लाह ताला ने हम सबको फैलाया, आप अपने ऊपर लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपने अबी अबू का नाम लिखे, कितने भाई बहन हैं आप लिखिए, चार पांच छह पांच सात होंगे ना माशाल्लाह, कहाँ रहते थे बचपन में उस शहर का नाम लिखिए, किस स्कूल में आप सारे भाई बहन पढ़ते थे वो लिखिए, और आज 2014 के 23 अक्टूबर के दिन को सोचिए क्या वो सारे भाई बहन इस वक्त किधर है। आप खुद वहां नहीं है, आपकी एक बहन हो सकता है दूसरे शहर चली गई हो शादी होके, आपके दूसरे दो भाई वो बाहर के मुल्कों में चले गए हो, फिर आप आगे उनकी नस्लें देखिए, बहन के बच्चे इस वक्त कहाँ का है, भाई के बच्चे किधर है, ये है जरा अकुम। अल्लाह ने हम सबको फिर ऐसे छट्टे, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं छट्टा मारना, जरा के लफ्ज में ऐसे होता है कि पकड़ के यूं बखेर देना, टिड्डियों की तरह फैल जाना, ये जो जुर्रा होती है ना चुंटी को कहते हैं, छोटी छोटी पत्रियां चांदी की, अल्लाह ने हम सबको फैलाया हुआ है। आज हम जब अपनों से जुदा होते हैं, एक को दूसरे के पास छोड़ के आते हैं, दूसरे को अलग होते हैं, तो हमारे दिल पे कितना हाथ पड़ता है। एक वक्त तो दिल हिलता है ना जब माँ बेटी से जुदा होती है या भाई बहन से जुदा होता है, जितने मर्जी शिकवे गिले हो जब सामने जाए ऐसे लगेगा कि इनसे प्यार ही ज्यादा किसी से नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हम सबको फैला दिया। अगर सारे एक ही घर के लोग एक खानदान के लोग एक ही जगह होते तो दुनिया कैसी होती, छोटे छोटे ग्रोहों में बटी होती। अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ हालात से गुजारता है, फिर हम मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हैं, लेकिन इसी तरह एक दिन तुहशरून, उस दिन हशर होगा, तुम सब इकट्ठे किए जाओगे। दुनिया में भी अब देखिए कि खुशी गमी के मौके पे सब जमा होते हैं ना, अल्लाह ना करे खानदान में कोई मौत हो जाए तो दूर दूर के लोग भी आते हैं, फिर कई दफा ऐसे रिश्तेदार वहां मिलते हैं जिनको 10 साल से नहीं मिले, 5 से नहीं मिले, फिर आप सुनाते हैं अच्छा सुनाओ क्या रहा, अच्छा सुनाओ क्या हालात हुए, अच्छा कैसा रहा कैसा हुआ। क्यामत के मैदान में लोग फारिग होंगे, अगले पिछले जमा होंगे। आप सोचिए, आप अपने दादा को जिनको आपने देखा भी नहीं, उनको क्यामत के दिन देखेंगी, और आपके दादा अपने 10 पोतों नवासों को देखेंगे और खुश होंगे कि वाह मेरे बाद इतने मेरी नस्ल में बच्चे हो गए। उस क्यामत के दिन सब पिछले अगले पहचान किए जाएंगे। ये किसकी कुदरत है? ये अल्लाह की शान है। आज भी अगर आप हज का मंजर जहन में लाएं तो अरफात का दिन इसी की एक छोटी सी तस्वीर है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग होते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसा बंदा आपके सामने आ जाएगा जिसको आप आज से 10 साल पहले जानते थे, लेकिन ऐसे देखा है कि अल्लाह ताला सामने खड़ा कर देता है। तो क्यामत का दिन करके ये असल में अल्लाह की कुदरत है। अगर आप अल्लाह सुब्हान तआला के नाम देखें तो अलबासित फैलाने वाला, और अल्लाह की जात जो है वो समेटने वाली भी है। ये उसकी कुदरतें हैं, इसको महसूस करने की जरूरत है। वहुवल्लज़ी युही व युमीत, और यहां ऐसे लग रहा है कि अल्लाह के बड़े बड़े कामों का जिक्र है। वो जिंदा भी करता है, वो मारता भी है। करो जिंदा तुम किसी को, करो किसी की मौत की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो, किसी की मौत की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। तुम तो किसी को ना जिंदगी दे सकते हो ना किसी को मार सकते हो। वलखुख्तिलाफुल्लैलिवन्नहार, और इसी का काम है दिन रात को बदलना। कर सकता कोई? इम्पॉसिबल थिंग्स का यहां जिक्र है। आप देखिए अल्लाह ताला की कई सिफात ऐसी हैं जो किसी हद तक इंसानों में भी हैं, लेकिन ये वो सिफात दिख रही हैं कि किसी भी इंसान के बस में नहीं है कि वो मौत दे दे या जिंदगी दे दे, रात को दिन में या दिन को रात में बदल दे। अल्लाह की जात करती है। तो अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अब इन आयतों को पढ़ते वक्त अब सूरह हज की आयत याद कर लीजिए जो बिल्कुल आखिर में थी कि वमा कदरुल्लाह हक का कदरी। हकीकत है कि लोगों ने अल्लाह की कदर का वो हक अदा नहीं किया जो कि करने की जरूरत थी। तो क्या मैंने अल्लाह की कदर पहचानी? देखिए असल ये नुक्ता है, मार्फत ईमान, किस तरह से अल्लाह की मार्फत बंदे को नेकियों पे माइल करती है और गुनाहों से दूर करती है। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम अपने हदीस के सेशन में आज ईमान की ही बातें करेंगे। और इसी में कमी है, कमी कहीं नहीं है, कमी यकीन में, कमी अजर में। क्यों 10 दफा तर्जमा नहीं में पढ़ती? यकीन ही कोई नहीं। किसी को लग तो पता जाए कि मैं यहां से जरा जाके शाम तक 4 घंटे किसी काउंटर पर खड़ी हो जाऊं, मुझे 50 पाउंड मिल जाएंगे। मारे बांधे जाके खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते? पांव सूज जाए, नरम जूतियां पहन ले, करते हैं, क्योंकि 50 पाउंड हाथ में आते हैं। और जिसको यकीन हो कि होता कि इस जुबान को हम चलाते का, इवन हाथ भी चलते थे। आप देखिए कि आपके और हमारे पास तो रिकॉर्डेड भी मौजूद है तर्जुमे। अगर सिर्फ हम रिकॉर्डिंग को प्ले करके खाना पकाते वक्त उसके साथ दोहराते रहे, कितना आसान है। आज के दौर में नेकी करना भी उतना ही आसान है जितना गुनाह करना आसान है, लेकिन यकीन की कमी। बड़े लखलोट हम नेकियों के मामले में, इतना वक्त होता है हमारे पास, फिर हम रोते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए कि हम इस वक्त को अपनी इस दुनिया ही के पीछे लगाते हैं। तो फरमाया फलात आकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? और आप देखेंगे जहां भी बात ईजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आप कह सकते हैं कि लॉजिकल बात है, उसके एंड पे अफलात आकिलून आता है। आप यहां भी नोट करना शुरू कर दें, आगे भी देखेंगे। दुनिया और आखिरत के तकाबुल में अक्सर लफ्ज अफलात आकिल होना था, यानी इसके लिए कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी मजहब का नुमाइंदा होने की भी जरूरत नहीं। ये तो तुम्हारी अकल बताती है कि क्या बेहतर है क्या नहीं है। लेकिन असल बात पता क्या है कि बल कालू मिसलमा काल अलवलून, बल्कि उन्होंने भी ये वही कुछ कहा जो इनसे पहले ने कहा था। यहां समझिए, लोग हमेशा वो करते हैं जो दूसरे करते हैं। दूसरों की बोली हुई बातें बोलते हैं, दूसरों की कही हुई बातें सुनते हैं, दूसरों के हाल पे चलते हैं। आज रिवाज हो जाए तो हम सब वही काम करने लग जाएंगे जो आज हमारे लिए मुमकिन नहीं। फैशन हो जाएगा, हम सब वही करने लगेंगे। तो वक्त की धार और लोगों के झुंझट्टे में रहकर काम करना आसान लगता है। अगर यहां आपके सामने 4 लोग आके कहे ना कल मैंने 10 दफा तर्जमा याद किया, उसके बाद तो मेरे काम यूं हो गए, उसके बाद तो मेरी आवाज भी बैठी हुई थी वो ठीक हो गई, मेरे सर में दर्द था मैंने तर्जमा शुरू किया ठीक हो गया। अगर 4-6 लोग यहां आके शुरू करेंगे ना, तो कल देखिएगा कि 10-12 करेंगे और परसों पर 24-25 करेंगे। इंसान की फितरत है कि मिसलमा कालल अव्वलून। बस अब इंसान खुद को बेवकूफ समझता है वो नेकी करते हुए जो दूसरे नहीं कर रहे होते, तो मैं क्यों टू मच हो जाऊं, मुझे क्या। हालांकि आपको ये नहीं पता कि वही टू मच होने वाले असाबिकून अलावलून कहलाते हैं। तो हमेशा अपने लिए बड़े गोल बनाए। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तबाह क्यों हुए, दूसरों की बोली बोली इन्होंने। कालू इजाम इतना बकुन्ना तो रोबम व इजामा, उन्होंने कहा, क्या हम जब मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हमारी हड्डियां रह जाएंगी, इन्ना लमबूसून, तो क्या फिर हमें उठा लिया जाएगा? यानी बड़ी हैरत की बात है, पहले हम मरेंगे, फिर कुछ अरसा मिट्टी में रहेंगे तो मिट्टी में मिट्टी हो गए, और फिर जो हमारी हड्डियां थी बस वो बच जाएंगी और गोश्त चर्बी सारी मिट्टी खा जाएगी, तो क्या हमारी गली हुई हड्डियों से क्या दोबारा कोई उठा के खड़ा करेगा? इट्स इम्पॉसिबल। इसको कहते हैं कि यकीन की कमी। आप देखिए कि जब हमें इस बात का यकीन नहीं है ना कि हम दोबारा उठा खड़े किए जाएंगे, तो नेकी करना मुमकिन ही नहीं। कौन ऐसे गले में पैसे डाले कि जहां से कभी निकलते देखे ही नहीं, बस वो सेव 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 के नाम पे आगे से आगे की उम्मीदें। इसी तरह से लोगों का हाल यही होता है कि उनको अल्लाह के वादों पे एतबार करना, इस दुनिया के उधार को आखरत में चुकाने का वादा, इस पे एतबार बड़ा मुश्किल लगता है, इम्पॉसिबल। और आप देखिए कि ये कोई बेवकूफ लोग नहीं है जो ये दलील देते हैं, बहुत अकलमंद लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद मट्टी होके घुल के फिर कैसे उठेंगे। और बड़ी बात है, ये तो तुम बस ऐसे ही कहते रहते हो, लकद वो इदना नहनु वाओ ना खास मिन कबलू, इसी की धमकी तो हमें भी दी जा रही है, इससे पहले हमारे बाप दादा को भी दी गई। यानी आप देखिए किस तरह, जिसको उर्दू में हम कहते हैं ना किसी के मुंह लगना, नबी के मुंह लग रहे हैं कि देखो बार बार हमें कहते हो मर के जियोगे, आज तक हमारे बाप दादा तो उठ के आए नहीं, 1000 साल हो गया, 2000 हो गए, 3000 हो गए, किधर है जो हमारे अगले आते? जैसे ये आज की बात हो, कोई कहे कि अच्छा जी 2014 तो आ गया, अभी तक तो क्यामत आई कोई नहीं, अभी तक तो कोई एक मुर्दा उठ के कब्र से आता नहीं दिखा, तो तुम बताओ कि ये होगा कब? यानी मजाक उड़ाने का अंदाज है कि ये सिर्फ झूठे वादे, ये सियासी वादे हैं, ये बातें कभी पूरी नहीं हुई, हमारे बाप दादा भी ये धमकियां सुन के चले गए, अब तुम हमें भी कह रहे हो। इन हाजा इल्ला सातीरुल अव्वलीन, ये कुछ नहीं मगर किस्से हैं अगले लोगों के। यहां आप देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि ये सिर्फ बातें हैं, जिसका हम कहते हैं ना ये ढोंग है, असातीर के नीचे लिख के ढोंग, क्योंकि असातीर का लफ्ज जो है ना अरबी जुबान में मुख्तलिफ तरह से आता है, अस्तूरतुन की जमा है, अस्तूरतुन असातीर, ठीक है। और आप देखिए कि उर्दू को अगर आप देखें, अरबी को देखें असातीर अस्तूरा, और इंग्लिश में लिख के देखिए तो स्टोरी स्टोरी स्तूरा स्तूरी, ऐसे लगता है कि यूसी का लफ्ज है, जैसे वो कहते हैं ना फोक टॉक, झूठी कहानियां, ऐसी पुरानी बातें जिसको हमारे यहां लोक दास्तान कहते हैं, कहते थे ये बातें हैं सिर्फ बनी हुई बात और कुछ, एक मिथ है, क्या मतानी है, आएगी देखेगी ये होगा वो होगी, कानी असातीरुल अव्वलीन। इस तरह से ये लफ्ज है कि जिसको पढ़ने के बाद ऐसे लग रहा है कि उनको लगता है ये फिक्शन है, लफ्ज फिक्शन भी लिख सकते हैं अस्तूरा के नीचे, क्योंकि झूठी कहानी को कहते हैं। कहते थे ये कुछ बातें नहीं, ये सिर्फ तुम मौलवियों ने बातें बनाई हुई है, तुम हमें खुश देखना नहीं चाहते, तुम्हें हमारी खुशियां रास नहीं, ना तुम खुद जीतते हो खुशियों में, ना हमें, ना खुद इंजॉय करते हो ना हमें करने देते हो, और तुम चाहते हो कि बस हम रोज रोते धोते ही रह जाएं, तो बस होना हुआना कुछ नहीं। आज भी देखिए अपने जुबान हाल से इंसानियत यही कहती हुई दिखती है, देखेंगे जब होगा, अच्छा चलो चले ठीक है, बहुत पता है, सब पता है हमें। जब किसी की बात का यकीन नहीं होता ना, तो हम ऐसे कंधे उचकाते हैं। आप देखिए कि जब एक शख्स गलत काम करता है ना, तो उसके ऊपर एक नशा भी होता है झुठलाने का। आज हम चूंकि ये किताब के सफों में लिखी हुई बात पढ़ते हैं ना, तो हमें इसकी वो अंदर की फीलिंग नहीं आती जो किसी के कलाम से सुनने के बाद आती है, जो कि यहां अल्लाह सुब्हानहु तआला बयान कर रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी बातें करते हैं, लेकिन अगर आप इसको उनके एक्शन में ले, अल्लाह के नबी उनके सामने गए, देखो डर जाओ बच जाओ, ये नहीं तो आगे से कंधे उचका के कहते हैं छोड़ो छोड़ो हमें इसकी कोई नहीं परवाह, ये कोई नहीं होना, ये ऐसे ही तुम लोगों ने बातें बनाई हुई हैं और बस ये कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे खबर, ऐसी बातें। कल किसी एक बच्ची थी, एक यंग बच्ची है बिल्कुल, यानी नेबर में हमारे, तो उससे बात ऐसे देखा, हाय बाय की, तो मैंने कहा इट्स कोल्ड नाउ, कहती कोल्ड है लेकिन इसके बावजूद मैं बाहर जाके सिगरेट पीने लगी हूं ना, तो मैंने कहा तुम सिगरेट पीती, इंग्लिश में बात हो रही थी, वो इंग्लिश है, तो मैंने उसे कहा कि तुम सिगरेट पीती हो, कहती यस, बड़े ऐसे जैसे, मुझे वो उसका स्टाइल इस लफ्ज से समझ आ रहा है, तो मैंने कहा तुम्हें पता कि ये हार्मफुल, कहती यस आई नो आई डू एंड आई विल डू, एंड कंधे उचकाती हंसती हुई चली गई। कि मुझे पता है सिगरेट पीना बुरी बात है, मैं पीती हूं एंड आई विल डू। उसने इतने यकीन से कहा कि मेरे दिल से हो उठी, जितना यकीन इस वक्त इसको इस काम का, अल्लाह करे हमें इस अपने कलाम का हो जाए। आई विल डू, आई डू, मैं करती हूं, मैं पढ़ती हूं, मैं पढ़ूंगी, मुझे पता है मेरा इसमें नुकसान हो रहा है, दुनिया का कोई मेरे से नाराज है, बट मैं डू। और उसने बड़ी अदास दिखाई, खूबसूरत लग रही थी वैसे अदाएं दिखाती हुई। यकीन करें कि मैंने दुआ दी कि अल्लाह इसको यही यकीन अपनी इस किताब पे दे दे। तो गुनाह का एक नशा होता है, उसको पता है बुरा है, मैं कर रही हूं, गलत करती हूं, और आई विल डू, करती ही रहूंगी। ठीक है, करिए, कोई बात नहीं। तो जब किसी को झुटलाने को दिल करता है ना, तो इंसान इसी तरह की बातें करता है। फिर ये जो लफ्ज़ है ना सातीर, इसको अगर आप थोड़ा सा समझ लेना तो मुसत्तरतु मक्तूबतुन, लिखना चाहें तो समझ आती है, लिख ले नहीं, मतलब कि लिखी हुई हकायतें। उर्दू में हम कहते हैं ना हकायतें, रिवायतें, कहानियां, यही सारी बात है कि ये नकल दर नकल होती हुई चीजें हैं, हम इन चीजों को नहीं मानते, तुम कहते रहो। चलो ठीक है, तुम स्टबन हो ना, तो अपनी बात में स्टबन रहो। अब जरा कुछ सवालों के जवाब दे दो, यहां से अब क्वेश्चन है। जैसे एक सेशन के एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, तो कुल कह दीजिए, क्या कह दीजिए, लिमन इल अर्दु, किसकी है ये जमीन, जवाब दो। जिस जमीन पे गुनाह करते हो, जिस जमीन पे रहकर तुम अपने आप को मस्तियों में मसरूफ करते हो, बताओ हु ओन्स दिस, हु इज द ओनर ऑफ दिस अर्थ, वमन फीहा, दूसरा क्वेश्चन, और कौन है ओनर उसका जो के जमीन में, और जमीन में क्या कुछ है। आपकी नजर पहाड़ों पे जाएगी, समंदर पे जाएगी, दरख्तों पे जाएगी, लेकिन क्या इस मन में अना नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तुम भी तो इस जमीन के ऊपर ही खड़े हो, तुम किसके हो। इन कुन तुम तालम, अगर तुम जानते हो, यानी जवाब बताओ जरा, तुम क्या करते हो, क्या करते हो जरा बताओ। इसलिए कि जरूरत है इस बात की कि तुम खुद को अल्लाह का समझो। ये है असल प्रॉब्लम लोगों का, कि वो खुद को अल्लाह का नहीं समझते। ली मन, अपने आप से पूछिए, अल्लाह भी तो सवाल ही पूछ रहे हैं ना, किसका है, तो आप खुद से पूछिए मैं किसकी हूं। ये जुमला तो बड़ा आसान है कि इन्ना लिल्लाही, लेकिन ये कहना कि इन्नी लिल्ला, ये कितना मुश्किल है, हम कितना इस चीज को सोचते हैं। याद रखिए कि ये याद आ जाए ना, और ये याद रहे, तो कभी भी जिंदगी में गफलत का पर्दा नहीं आएगा। आप इंतजार नहीं करेंगे कि कब एक काम पूरा हो और जान छूटे। क्या मैं और आप कभी ये चाहते हैं कि हमारे शौहर हमें छोड़ दें, बस एक साल की शादी और खत्म। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी जान छोड़ के हमें अलग कर दें। तो बंदगी का रिश्ता बंदा कैसे छुड़ाए। अल्लाह की मैं हूं तो मैं तो मरते दम तक हूं, अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है तो मरते दम तक करनी है। इन कुंतुम तालमून, और इसमें इल्म छुपा हुआ। और आप देखेंगे कि अब आखिरी आयतें ऐसी पुरसोस किस्म की है कि दिल चाहता है कि इंसान सुनते हुए रोए। ऐसा दिल पे चोट पड़ती है कि इनकी बेतनाई तो देखो, सयकूलून लिल्ला, जानते बूझते अनजान है, अनकरीब कहेंगे अल्लाह की है, हाँ अल्लाह का सब कुछ, धड़ल्ले से कहेंगे हाँ हमें पता है सब अल्लाह ने पैदा किया है, यह सब हमें पता है, गॉड है। तो कुल अफला तज़क्करून, फिर कह दो क्या तुम नहीं नसीहत पाते। देखिए कहीं कहा जा रहा है इन कुंतुम तालमून, अब यहां आ रहा है अफला तज़क्करून, कि किसी को कह देना इतना ही कि हम मानते हैं कि तुम खुदा हो, तुम रब हो, लेकिन उसकी बात ना मानना, क्या इस बात में कोई रब तो बनता है। नसीहत पकड़ो, गौर करो, फिर और सवालों के जवाब दो। कुल मर रब्बु समावात इस्सबी व रब्बुल अर्शिल अजीम, आप इनसे पूछिए कि सातों आसमानों का अर्श अजीम का मालिक कौन है, हु इज द टेक केयर ऑफ दिस यूनिवर्स, कौन है जो इस बड़े अर्श का मालिक है। आप देखिए कि पहले लफ्ज में देखिए तो सातों आसमान, जरा इमेजिन तो कीजिए, सब समावात, एक ही आसमान नहीं हम पूरा देख पाते, अगर जहां नजर दौड़ाएं ईस्ट से वेस्ट तक, जहां आप रहते हैं आपको एक ही आसमान दिखता है, किसका है, इज ओन्ड बाय अल्लाह। कभी किसी के घर की छत इतनी बड़ी हो तो हमारा दिल उसके आगे कैसे बैठने लगे, और जब अल्लाह की जात का ये सब कुछ है, गौर ही नहीं शैतान असल में करने देता। कभी अपने घर की खिड़की के बाहर खड़े हो, खिड़की से बाहर देखा करें, जिधर तक निगाह जाती है आपके, ये अल्लाह की है, ये अल्लाह की चीज है, और अर्श अजीम तो हमने देखा भी कोई नहीं है कि जिसके बारे में इतना हुसन आता रिवायात में कि अर्श के ऊपर से सोने की टिड़ियां बरसती रहती हैं हर वक्त। क्या वो फैंटसी होगी और क्या वो एक मैजिक लैंड होगी जो अल्लाह का अर्श है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक गए तो सिर्फ सिदरतुल मुंतहा का मंजर अगर आप पढ़ें हदीसों में तो बिल्कुल ऐसे इमेजिनेशन में मतलब किसी फैंटसी लैंड में चले गए। वहां से आवाजें आती हैं अल्लाह की, फरिश्तों की आवाजें और तस्बीहात की आवाजें, और कहीं सोने की टिड़ियां बरस रही हैं और कहीं गोल्डन रंग का तूबा का दरख्त है जिसकी शाखें सोने की हैं और जिसके फल लटक रहे हैं। इतनी खूबसूरत कायनात बनाने वाले ने सोचिए कि अपना ठिकाना कैसा रखा होगा। वो मालिकुल मुल्क और हम उसको नहीं जानते, अभी तो पहचान भी नहीं पूरी हुई। इसीलिए तो अफकुल अफला तत्तकुन, फिर इसीलिए तो डरते भी तो नहीं हो ना, फिर तुम्हें उससे खौफ कहाँ आता है। सारी दुनिया का डर है, चार लोग हमारे घर आने हमारी जान पे बनी होती है, किसी को हमने सामना करना हो हमारी जान पे बनी होती है, एक हमने इमिग्रेशन से गुजरना हो हाथ पांव फूल रहे होते हैं। अल्लाह से कितना डरते हैं, किसी को मत पूछे। देखिए ये अब आखिरी सपारे जो आधे कुरान के बाद चल रहे ना, बस आप और आपका रब, कोई तीसरा बंदा आपकी सोचों में ना रहे। भूल जाए सारी दोस्तों को, सारे खानदान के लोगों को, रिश्तेदारों को, फुला ऐसा नहीं, मैं कैसी हूं। खुद को तोड़ मोड़ के इस तरह गूंद का बना ले कि जैसा अल्लाह चाहता है वैसी शक्ल बना ले, वरना कुरान कुछ नहीं देगा। जिस फॉर्म में आज है ना, इसी में प्रिजर्व हो जाएंगे। पहला कुरान बंदे की असल खोल के सामने रखता है। अगली दफा भी आप पढ़ेंगे, आप बार बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये जो कुरान है ना इस वक्त का आपका, ये आपका मुस्तकबिल मुतय्यन करता है। बहुत कम लोग होते हैं जिसके बाद अमल करते हैं ज्यादा, तस्किया तो होता रहता है लेकिन एक जाहिर जो चेंजेस आनी होती है ना वो आ जाती है पहली दफा पढ़ के। अगर आप में से कोई पर्दा कर लेगा तो कर लेगा, अगर आप में से किसी की तहज्जुद शुरू हो गई तो हो गई, और इसी तरह सो ऑन। आगे आगे जाके तो कैफियात बदल जाती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे अमल करना आसान कर दे, लेकिन याद रखिए कि मुंह से कह देना कि सयकूलून लिल्लाह ये और कहानी है, और दिल जुबान को साथ रख कर कहना ला इलाहा इल्लल्लाह ये बिल्कुल अलग कहानी है। इस दुनिया और माफीहा का खालिक और मालिक अल्लाह को मानना, अर्श और फर्श का मालिक उसको मानना, और इसके साथ फिर माल और दौलत का बुत पूजना, रस्म और रिवाज के बुतों के पीछे मरना, और खानदान और बिरादरी का खौफ खाना, ये देवी देवताओं से कोई छोटे बुत नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े बुत हैं। अल्लाह कहते हैं क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे, क्या तुम्हें मेरा जरा भी खौफ नहीं। कुलमम भी यदि ही मलकूत, ये बताओ कि किसके इख्तियार में है बादशाही। एक लफ्ज होता है मलक, एक होता है मालिक। अल्लाह सुब्हान तआला का नाम है अल मालिक, लेकिन मालिक अल मुल्क भी अल्लाह का नाम है। कुल अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क तूति अल मुल्क मन तशा, सूरत आल इमरान में हम पढ़ चुके। यहां लफ्ज मलकूत है, मुबालगे का सीगा है, एग्जैजुरेशन है। अफलु तफदील, किसी ये भी तो कहा जा सकता है कि किसके हाथ में है बादशाहत, लेकिन मलक की बजाय, मलकियत की बजाय मलकूत बादशाहत किसके हाथ में बताओ। और आप देखिए कि जिसके हाथ में बादशाहत होती है, अमूमन दुनिया में जो बादशाह होते हैं वो भी हमें जाहिर लगते ही हैं कि आजाद है, लेकिन एक खास हद के बाद वो भी आजाद नहीं होते। उनको भी वजीरों से मशवरा करना होता है, उनको भी कैबिनेट को साथ लेकर चलना होता है, लेकिन अल्लाह की जात ऐसी बादशाहत वाली है कि जिसको किसी से पूछना नहीं पड़ता। आगे आप देखिए अल्लाह ताला की वर्किंग मेथडोलॉजी, कि ना सिर्फ ये कि उसके हाथ में बादशाह, क्योंकि बाज़ दफा दुनिया में सिर्फ इख्तियार ही होता है आपके हाथ में लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते, जबकि अल्लाह की जात क्या है, वह हुआ युजीर वला युजारु अलैहि, जो पनाह देता है और जिसके मुकाबले में किसी को पनाह नहीं दी जा सकती। सारी दुनिया के धुतकारे हुए और परेशान लोगों को अगर आखिर पनाह मिली तो तेरे दामने रहमत में मिली। वो कहते हैं ना मिली तो कहीं ना मिली, जो मिली मुझ गुनाहगार को पनाह तो तेरे दामने रहमत में मिली। इसीलिए हम हर वक्त कुरान पढ़ने से पहले पढ़ते हैं आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह मुझे इस जालिम से बचा, इस दुश्मन से बचा। मैं बार बार खुद को सीधे रास्ते पे लाती हूँ, ये बार बार मुझे भटकाता है। क्या सुबह का आगाज ही हमारा गलत फैसलों से नहीं होता? सुबह उठने से लेके अब तक कितने गुनाह मैंने किए हैं लिखिए। आपकी मैंने तो कोई किया ही नहीं, मैं तो बस सुबह उठ के इधर आ गई। आना किस वक्त था, आई किस वक्त, कितना करके आना था काम, कितना किया, क्या लिया क्या दिया, क्या ये मेरे गुनाह नहीं है? क्या उन गुनाहों के साथ अल्लाह पूरी रहमत मुझे दे दे? फिर वो तकलीफों और बीमारियों और परेशानियों और आजमाइशों की सूरत में जब हमारे सर पे मुसल्लत होती है तो हम कहते हैं पता नहीं अन्ना लकी, हरी कहाँ से आ गया भाई? कहो तुम्हारे अपने हाथों के एक मामले हैं। याद रखिए अल्लाह ताला हमारे से जुल्म नहीं करता, वह हुआ यू जीरो। और इसका ऑपोजिट भी देख ले, अगर वो पकड़ ले तुमको तो वाला युजार वाले, ये जो यजीर और युजार के जोर से, जवेरिया जोर पनाह को कहते हैं, हमसाई को कहते हैं ना जवार, जवेरिया हमसाई। तो हमसाया क्या होता है? उसका आपका साया एक होता है, बीच की दीवार सांझी होती है। अमूमन हमसाए ही मुश्किल वक्तों में काम आते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं पकड़ूं तो जाओ फिर कौन है जो मेरे मुकाबले में तुम्हारी मदद करे। जब अल्लाह जरर देता है सारी दुनिया के डॉक्टर परेशान होते हैं, बीमारी समझ नहीं आती, दूर कब होती है? जब अल्लाह चाहे। इस तरह के हालात, इस तरह के मामले देखे, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आती बीमारी क्या है। हर डॉक्टर बेजार, हर हकीम को आजमा लिया, एलोपैथी हेमोपैथी, और लाशौरी तौर पर पता लगता है कि कोई एक बड़ी सख्त बीमारी है बच्चे को, और बाद में एकदम आप देखते हैं सब ठीक हो जाता है। कौन? बहुवा यु जीरो वला यु जार वलई इन कुन तुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हें इल्म है, इस इल्म को हासिल करो। आप देखें कि इल्म का कोई नेमुल बदल नहीं है। ये इल्म का पानी आपके मेरे दिल को नरम करता है, और आज इससे लोग कितना दूर है। कुरान का कोई भी इल्म हम हासिल करें, आप इसकी तजवीद करें हासिल, आप इसको हिफ्ज करें, इन सब का गोल ये है कि आपको इस कुरान की समझ आ जाए। हाफिज इसलिए हिफ्ज करें कि मुझे कुरान ना खोलना पड़े, मैं अपने हाफजे से पढ़ता जाऊं और अमल करता जाऊं। अच्छी तजवीद पढ़ने अलग, क्या सोचकर अच्छा तजवीद से कुरान पढ़े कि सही लफ्जों में पढ़ो और वो मेरे दिल पे असर करे और मैं अमल करूं। कुरान का जो बुनियाद गोल है ना, वो इसको इन कुंतुम तालकुलूना लिल्लाह, फिर कहते हैं ये सब अल्लाह का, यानी ये सब कुछ बना देने का काम और उसके खिलाफ पनाह ना ली जानी, ये सब अल्लाह के इख्तियार आता है, यानी ढिटाई से जवाब देते हैं। और आप देखिए कि ये सारी बातें मानते रहे तो फिर अल्लाह को इन पर गुस्सा क्यों है? तौहीद रबूबियत को मान रहे हैं, पीछे भी बात हुई थी, तौहीद रबूबियत और चीज है और तौहीद अलूहियत और चीज है। अल्लाह को रब बनाना, क्रिएटर गॉड मानना, इट्स वेरी इजी, प्रॉब्लम भी कोई नहीं इसके रास्ते में। मसला सबसे बड़ा यह है अल्लाह को माबूद बनाना, अल्लाह अलूहियत के दर्जे पे रखना, जिंदगी में उसकी जरूरत को महसूस करना। इस पे आके लोग फंस जाते हैं, कहते हैं नहीं हम ओनर गॉड नहीं मानेंगे, क्योंकि ओनर है तो पूछेगा, हिसाब लेने अल्लाह नहीं मानते, क्यामत के दिन उसके सामने खड़ा होना ये नहीं मानते। काकुल अनफान ना तो सहरून, फिर इनसे बताओ तुम पर कहां से जादू किया जा रहा है, ये तुम मशहूर क्यों हो गए हो, किसके सहर में आ गए हो? सारी बातें गलत हैं, ये जो तुमने खुद को झूठी तसलियां दी हुई है ना, असल हकीकत आखिरी आयत में अब खुल रही है। बल बल मैंने बल के, यानी असल मसला ये है, तुम्हारा प्रॉब्लम इनमें से कुछ भी नहीं जो ऊपर पूछा है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अतैनाहुम बिल हक, हम इनके पास हक लेकर आए हैं। असल इनकी चिढ़ जो है ना हक के साथ है, इनको बातिल अच्छा लगता है, इनको रियलिटी नहीं अच्छी लगती, इनको इमेजिनेटरी चीजों में रहना अच्छा लगता है, फिक्शन अच्छा लगता है। हक इनके अमल में चोट डालता है, हक इनकी ख्वाहिशों के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है, हक इनकी मस्तियों के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, और इनको हक वाली जिंदगी, सच वाली जिंदगी पसंद ही नहीं। वह इन नहुम लकाज़िबून, और अलबत्ता ये झूठे हैं। बस असल कहानी है। आप देख लीजिए यहां अलहक से मुराद कुरान भी है, कुरान के जो मुख्तलिफ नाम आते हैं वो उसमें एक नाम हक है। तो कुरान क्या? हम इनके पास हक लेकर आए, ये किताब हक के मुताबिक बातें करती हुई इनके सामने आती है, इसलिए इनको ये अच्छी ही नहीं लगती। देखिए सिंपल सी बात है, आप अपने ऊपर ले, बिल्कुल अपने आप पर ले। अगर आप अपनी दोस्तों को इजाजत दे दें कि आपके बारे में वो जो कुछ सोचती हैं दिल से, वो आपके सामने रखें। सच बताऊं मैं आपको, एक हफ्ते से ज्यादा आपकी दोस्ती नहीं रहेगी अपनी दोस्तों से, जो वो आपके बारे में दिल में सोचती हैं, जो हकीकत में आपकी रियलिटी है। और सच है, यानी कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी खराबियां हैं। अगर हमारे करीब रहने वाले हमारे बारे में पूरा सच खोल दें तो हम बहुत ज्यादा दिन उनके साथ ना रहें। इसके बरक्स आप किसी से कहें कि आओ जरा मेरी तारीफ करो, फिर वो आपकी तारीफें करें, फिर आपके गुण गाएं, फिर ये वो करें, तो आप देखिए जरा आपका दिल जाएगा, दिन तो दिन रात को भी उनके सामने बैठे रहें। यही कुरान के साथ लोगों का मसला है। कुरान लोगों को चेहरा दिखाता है, कुरान एक आईना है। इस आईने में चूके धब्बे दिखते हैं, इन धब्बों को देखने की जरूरत कम होती है। आपने कभी सनलाइट में अपने फेस को देखा हो? ना देखा हो तो आज जाके देखिएगा, और अगर मुमकिन हो घर में हो कोई बड़ा मिरर ले लें, मैग्नीफाइंग मिरर, और सिर्फ आप उसमें अपना फेस देखें सनलाइट में। मेरा नहीं ख्याल आप 2, 4, 10 सेकंड से ज्यादा देख सके, और उसके बाद आप घर के ड्रेसिंग रूम में आए और डिम लाइट ने ट्विंकली ट्विंकली करके फिर जरा आप अपने आप को देखें, तो आप कितनी देर तक शीशे से हटेंगे नहीं। कुरान आपको रियल फेस दिखाता है, और ये वही फेस है जो कियामत के दिन रब को करना है। इसी का जिक्र आप अगले सबक में हम पढ़ेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी आंखों पे पड़े हुए इन पर्दों को दूर कर दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। तिलावत सुनते हैं अगले सबक की, और इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे।